आप पागल हो गई हैं। वर्षा भी संग्रह में किताबें पढ़ रही थी। अचानक उसे कदमों और पन्नों की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब काफी देर तक आवाज नहीं रुकी तो उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ थी। कोई भी किताब का लिखा इतनी तेजी पढ़ नहीं सकता। सबको उसे धीरे धीरे समझकर पढ़ना चाहिए ताकि पढ़ा हुआ याद रह सके। तो फिर इतनी तेजी से पन्ने कौन पलट रहा था? उठकर देखने के लिए उस ओर जाने लगी जहां से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि विपिन पहली लाइन की किताबों के पन्ने पलट रहा था। ये साफ दिख रहा था कि वो कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि कुछ ढूंढ रहा था। उसे थोड़ी देर देखकर ये तो साफ हो गया था कि वो रुकेगा नहीं। क्या इसलिए माधव सर उसे अंदर आने से रोक रहे थे? पहले उसने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि उसके बर्ताव में अंतर देखकर उसे लगा था कि वो वाकई मेहनत करके अपनी बेकार छवि सुधारना चाहता था और उसे लगा था कि उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन उसे क्या पता था कि विपिन यहाँ पढ़ने या छवि सुधारने नहीं, उस ढूंढने आया था। ये टीचर संग्रह था। यहाँ रोज हजारों टीचर आते थे, इसलिए यहाँ कोई कीमती चीज दोबारा मिलना नामुमकिन था। इस तरह से सिर्फ पन्ने पलटना तो संग्रह का अपमान करना होगा। इतनी शर्मनाक बात थी। शायद इसे पता था कि मैं यहाँ आऊंगी, इसलिए वो जानबूझकर बाहर ही खड़ा था ताकि मेरी नजर में आ सके, और अब यहाँ अंदर शोर मचाकर मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हो तो सकता है, लेकिन ऐसा करके वो सिर्फ मुझे गुस्सा दिला रहा है। अब प्रशा के दिमाग में विपिन की छवि खराब हो गई थी। उसकी सुंदरता की वजह से कई लोग उसके सामने अच्छे बनने का नाटक करते थे ताकि उनकी छवि बरकरार रहे। विपिन भी सच में कुछ पढ़ने की बजाय सिर्फ शोर मचाकर उसका ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन सच तो ये था कि प्रशा को इस तरह नाटक करने वाले लोग बिल्कुल नहीं भाते। थोड़ी देर विपिन की ओर देख लेने के बाद प्रशा को यकीन हो गया था कि वो सिर्फ नाटक ही कर रहा था। अगर सच में पढ़ने आया था तो सभी विषयों की किताबें क्यों देख रहा था? और तो और उन्हें भी देख नहीं रहा था, सिर्फ तेजी से उनके पन्ने पलट रहा था। इतनी स्पीड से तो किताब का नाम पढ़ना भी मुश्किल था, उसके अंदर की लिखावट पढ़ना तो बहुत दूर की बात थी। ऐसा सोचकर प्रशा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। वो विपिन के पास जाकर बोली, विपिन सर आप क्या कर रहे हैं? विपिन इस बात से बेखबर था कि उसकी हरकतों को नाटक का नाम दे दिया गया था, इसलिए उसने बिना सिर उठाए जवाब दिया, पढ़ रहा हूँ। ये बात सुनकर प्रशा ने बड़ी ही बेरुखी से कहा, पढ़ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपकी इन हरकतों से मैं आपको जीनियस समझ लूंगी तो आप गलत हैं। मेरा ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए ये नाटक करना बंद करें। मैं इन बचकाना चीज़ों से प्रभावित नहीं होती। आपके ऐसा करने से मुझे गुस्सा ही आएगा। विपिन किताबें देखता रहा और बिना रुके बोला, ठीक है। उसे आज ही वहाँ की सारी किताबें देखनी थी और स्वर की लाइब्रेरी में उन्हें लाना था। समय कम था, इसलिए उसे दूसरों के साथ बातचीत करके गंवाना ठीक नहीं होगा, और वैसे भी उसके साइड में तो सामने वाला खुद को कुछ ज़्यादा ही महत्व दे रहा था। विपिन क्या कर रहा है और उसे क्या मतलब? माना कि वो सुंदर थी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही अकेली इतनी सुंदर हो। उसकी दुनिया में तो और भी कई सुंदर लड़कियां थीं, प्रशा से भी ज़्यादा सुंदर, जो ना केवल सुंदर थी बल्कि उन्हें और भी कई चीज़ें आती थी। उसके जैसी बाहरी सुंदरता विपिन को पसंद नहीं थी। उसे इम्प्रेस करने के लिए विपिन के पास फालतू एनर्जी नहीं थी। विपिन का झुका सिर देखकर प्रशा को लगा कि विपिन उसकी बात समझ गया था, इसलिए वो मुड़ी और जाते हुए उसने कहा, क्योंकि आप बात समझ गए हैं तो प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, अपना टाइम बर्बाद ना करें। ठक 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 ठक, कुछ पल बाद ही उसे कदमों की आहट सुनाई दी। ये हुई ना बात, उसे लगा कि विपिन हार मान कर चला गया। वो वापस अपनी किताब पढ़ना शुरू कर रही थी कि उसे फिर से पन्नों की आवाज़ आई, शू 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 शू। उसने फिर उस ओर देखा जहाँ विपिन था। वो अब भी वहीं खड़ा था और फिर से वही हरकतें कर रहा था। अब तो प्रशा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारा नाटक ख़त्म नहीं हुआ। मैंने अभी कहा कि तुम्हारी ये हरकतें सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाएंगी, फिर भी तुम वही किए जा रहे हो। ये सब करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? अब तो वो उठी और गुस्से में सीधे विपिन के सामने खड़ी होगी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? तुम जितना नाटक करोगे मुझे उतना ही ज़्यादा गुस्सा आता रहेगा। इस तरह से तुम मुझे आकर्षित नहीं कर पाओगे। प्रशा को फिर से वहां देखकर इस बार विपिन चिढ़ गया। वो बार बार उसे परेशान करने आ जाती थी। उसने प्रशा को कहा, आप अपनी किताब पढ़िए और मुझे अपना काम करने दीजिए। अगर आप टाइम पास करना चाहती हैं और किताब पढ़कर बोर हो गई हैं, कोने में बैठकर ख्याली पुलाव बनाइए, लेकिन मुझे परेशान मत कीजिए। ऐसा तो नहीं कि वही दुनिया की सबसे सुंदर लड़की थी, तो फिर इतना घमंड किस बात का? तुम? प्रशा को लगा नहीं था कि विपिन उससे इस लहजे में बात करेगा। उससे इस तरह से कोई बात नहीं करता। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जानता भी है मैं कौन हूँ। मैं स्कूल में सबसे सुंदर हूँ। मेरे पास न केवल सुंदरता थी बल्कि टैलेंट भी था, और टीचर हो या स्टूडेंट सभी मुझे देवी मानते थे। उसके सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। और उसे मनाने के लिए अच्छा बर्ताव करते थे, लेकिन ये कह रहा है कि मैं पागल हो गई हूँ और मुझे ख्याली पुलाव बनाने के लिए कह रहा है। ऐसा सोचकर प्रशा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। ना सिर्फ आंखें बल्कि उसका तो पूरा चेहरा ही लाल हो गया था। इससे पहले कि वो उसे डांट लगाती, वो वापस मुड़कर पन्ने पलटने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और प्रशा को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। प्रशा ने भी दांत भींच कर कहा, ठीक है नाटक करते रहो, मैं भी तुम्हारी असलियत सामने लाकर रहूंगी। पहली बार किसी आदमी ने उससे इस तरह की बात की थी। ठीक है, अगर तुम्हें किताब पढ़ने का नाटक ही करना है तो करो, मैं भी देखती हूँ कितनी देर तक कर सकते हो। जब तुम्हारा नाटक खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हारी असलियत सामने लाकर तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाऊंगी। उसके बाद प्रशा वहां से गुस्से में चली गई। अपनी जगह पर वापस जाकर उसने अपनी किताब निकाली और नोट लिखने लगी। पहले तो उसका मूड अच्छा था और उसने सोचा था कि वो अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए आज अच्छे से पढ़ेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसका सामना ऐसे इंसान से हो जाएगा। सारा मूड खराब हो गया था। वो अपना काम कर तो रही थी लेकिन बार बार उसका ध्यान विपिन की ओर जा रहा था। वो अभी भी किताबें उठा उठा कर उनके पन्ने पलटने में लगा हुआ था, जैसे आज एक भी किताब छोड़ना ना चाहता हो। अगर कोई किताब उसे संग्रह के किसी भी कोने में मिल जाती तो वो उसे उठाकर उसके पन्ने पलटने लगता। देखते हैं कितनी देर तक ये नाटक कर सकते हो। विपिन की उन बातों के बाद प्रशा अब उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। उसका मूड बिगड़ गया था और अब वो उसका दिन भी खराब कर देगी। वो कागज पर नोट करती रही और उस पल का इंतजार करती रही जब विपिन अपना नाटक बंद कर वहां से जाएगा, लेकिन वो हैरान थी कि विपिन बार बार ऐसे ही किए जा रहा था और रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। वो पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक ऐसा ही करता रहा। दोपहर से रात तक उसने एक भी मिनट के लिए ऐसा करना नहीं रोका। 6-7 घंटे बीत गए लेकिन वो अभी भी वही किए जा रहा था। अब तो प्रशा को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। अगर वो ऐसा सिर्फ ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा था तो प्रशा उसे पहले ही बता चुकी थी कि उसे ये सब पसंद नहीं था। ये जानकर तो उसे रुक जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो पन्ने ही पलट रहा था, वो भी इतनी देर तक। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं इसके दिमाग में कोई खराबी तो नहीं, कहीं सच में टेक्निक खराब होने के कारण पागल तो नहीं हो गया। उसने सुना था कि जब किसी की टेक्निक बिगड़ जाती है तो वो पागल हो जाता है और अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, कहीं इसके ऐसा करने के पीछे यही कारण तो नहीं। वो विपिन की ओर देख ही रही थी कि विपिन कहीं सच में पागल तो नहीं हो गया कि अचानक विपिन रुका और उसने आखिरी किताब वापस रख दी। बहुत नॉलेज मिल गया। लगातार 6-7 घंटे तक मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने संग्रह की सारी किताबें अपने दिमाग की लाइब्रेरी में दर्ज कर ली थी। स्वर्ग की लाइब्रेरी ने उन सभी किताबों की अच्छाई और गलतियां दोनों सामने ला दिया था। हर किताब के बारे में जानने के बाद उसे टेक्निक, पोज, दवाई, हथियार, व्यू आदि कई सब्जेक्ट के बारे में अच्छी जानकारी हो गई थी। रेणु के शरीर के लिए कौन सी टेक्निक ठीक रहेगी उसे अब पता चल गया था, लेकिन इससे पहले उसे कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। पूरे संग्रह को पढ़ने के बाद उसने रेणु की बीमारी का इलाज मिल गया था और अब जाकर उसे चैन की सांस लेने का मौका मिला था। उसे पहले के 3 लेवल की भी कमियां और गलतियां पता लग गई थी। अगर उसे कुछ समय मिलेगा तो वो पहले पार किए हुए लेवल की तकनीक भी दोबारा कर उन्हें सुधार लेगा। गुड गुड गुड। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। इतनी देर तक काम करने के बाद अब जाकर भूख लगने का ख्याल आया। वो काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे दोपहर के खाने का ख्याल ही नहीं रहा। सिर हिलाता हुआ वो संग्रह से बाहर ही जा रहा था कि उसे अपने सामने प्रशा खड़ी मिली और वो उसे नफरत से देख रही थी। ये अभी तक यहीं थी, 6-7 घंटे बाद भी यहाँ से गई नहीं। इतनी घमंडी लड़की से निपटने के लिए उसके पास फालतू टाइम नहीं था, इसलिए वो बिना रुके सीधे गेट की तरफ बढ़ा। वहीं रुक जाओ। वो बाहर निकला ही था कि माधव सर ने उसे रोक लिया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लग रहा था मानो अभी फूट पड़ेंगे। इस इंसान को मैंने बहुत झेल लिया। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, दोषी दोषी और सिर्फ दोषी। विपिन ने हैरानी से कहा, जी माधव सर कहिए। वो चिल्लाकर बोले, विपिन सर तुम यहाँ पर पढ़ने नहीं सिर्फ मुसीबत खड़ी करने आए थे, आज के बाद तुम्हारा यहाँ आना मना है। अगर तुम दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मुसीबत? श्रेष्ठ माधव आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बड़ी ही शांति से किताबें देख रहा था, मैंने कौन सी मुसीबत खड़ी की? हालांकि उसने पूरे संग्रह को अपने दिमाग में डाल लिया था और उसे दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी माधव को ऐसा कहते देख विपिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसा क्यों है कि आप दूसरे लोगों को मेधावी टीचर और मुझे मुसीबत के रूप में देखते हैं? ये क्या बात हुई, ये तो भेदभाव करना होगा।